नमस्कार भारत, आज है सितंबर महीने की 18 तारीख दिन बुधवार। सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। बीबीसी को दिए साक्षात्कार में तालिबान ने कहा, अमेरिका से बातचीत के दरवाजे खुले हैं।
The negotiation is the only way for peace in Afghanistan. So that's why we have started negotiation.
इसराइल में एग्जिट पोल्स के नतीजे, बिन्यामिन नेतन्याहू अपने दम पर नहीं बना पाएंगे सरकार।
ממשלה לאומית ליברלית רחבה.
पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को श्रीनगर हवाई अड्डे से दिल्ली वापस भेजा गया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सब कुछ वहाँ पर नॉर्मल है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन उन्होंने हमारी एक भी नहीं सुनी और जबरदस्ती हमको प्लेन में बैठा के वापस भेजा है।
खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, मानसी दास से। अफगान तालिबान शांति वार्ता के मुख्य वार्ताकार शेर मोहम्मद अब्बास ने कहा है कि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शांति वार्ता में एक बार फिर से शुरुआत करें। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में 18 साल से जारी संघर्ष को खत्म करना अमरीका और तालिबान दोनों के ही हित में है। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में शेर मोहम्मद अब्बास ने कहा कि ये बातचीत अफगानिस्तान में शांति का एकमात्र रास्ता है। 6 सितंबर को काबुल में तालिबान के हमले में एक अमरीकी सैनिक और 11 अन्य लोगों की मौत के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दोहा में चल रही अफगान शांति वार्ता रद्द कर दी थी। सऊदी अरब ने कहा है कि उसके दो तेल संयंत्रों पर हुए ड्रोन हमले के बाद तेल के निर्यात में हो रही कमी से जूझने के लिए वो अपने तेल भंडारों का इस्तेमाल कर रहा है। इन दो हमलों के कारण देश के रोजाना के तेल उत्पादन में 50% तक की कमी आ गई थी, लेकिन सऊदी ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान ने कहा है कि इस महीने के आखिर तक हालात सामान्य हो जाएंगे। इधर वॉशिंगटन से मिल रही जानकारी के अनुसार अमरीका ने कहा है कि उसने ईरान में उन ठिकानों की सही जानकारी उन्हें मिल गई है जहां से सऊदी अरब के तेल संयंत्रों पर हमला किया गया था। अमरीकी टीवी चैनल CBS के अनुसार दक्षिणी ईरान की एक जगह से 20 से अधिक ड्रोन छोड़े गए थे और एक क्रूज मिसाइल दागी गई थी। रिपोर्ट में अज्ञात सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी गई है और ये भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि इस नतीजे तक पहुंचने के लिए अमरीका ने किन सबूतों का इस्तेमाल किया। व्हाइट हाउस के डिप्टी मीडिया सचिव होगन गिडली ने कहा,
The president's being cautious, and if we were banging the gong today about
राष्ट्रपति ट्रंप बेहद सावधानी बरत रहे हैं। अगर वो आज अमरीकी लोगों से बात करने से पहले ईरान पर हमले का दोषी होने का आरोप लगा रहे हैं तो सभी यही कहेंगे कि वो युद्ध चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति अपने काम करने के तरीके में स्पष्ट हैं। हमने उत्तर कोरिया के साथ भी ऐसा ही रवैया अपनाया था। हमने उन पर लगे प्रतिबंध नहीं हटाए, लेकिन हमने उनसे बात करना जारी रखा। हम उम्मीद करते हैं कि ईरान के साथ भी ऐसा ही होगा। व्हाइट हाउस के डिप्टी मीडिया सचिव होगन गिडली के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इसराइल आम चुनावों में कल मतदान संपन्न हो गया है, जिसके बाद अब एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ रहे हैं। इन एग्जिट पोल्स में मौजूदा प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू और उनके मुख्य प्रतिद्वंदी बेनी गेंट्स के बीच कड़ा मुकाबला दिख रहा है। इसराइली टेलीविजन चैनल में प्रसारित किए गए 3 अलग अलग एग्जिट पोल्स के अनुसार नेतन्याहू की दक्षिणपंथी लिक्विड पार्टी और बेनी गेंट्स की मध्यमार्गी ब्लू एंड व्हाइट गठबंधन को संसद में 31 से 34 सीटें मिलने की उम्मीद है। स्पेन के राजा फिलिपे ने कहा है कि देश में सरकार बनाने के लिए कोई भी राजनीतिक दल संसद में बहुमत हासिल करने में नाकाम रही है और इस कारण फिर से चुनाव कराए जाने चाहिए। राजमहल की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि विपक्षी पार्टियों ने मौजूदा प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज का समर्थन करने से इनकार कर दिया है, जिस कारण गठबंधन सरकार की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। एक संवाददाता सम्मेलन में पेड्रो सांचेज ने कहा, बीते अप्रैल और मई में स्पेन के लोगों ने अपना वोट देकर अपनी मंशा बताई थी, लेकिन दुर्भाग्य से दो कंजर्वेटिव पार्टियों और एक वामपंथी राजनीतिक पार्टी ने सरकार बनाने की राह में रुकावट पैदा की और सरकार नहीं बन सकी। मैं स्पेन के लोगों से निवेदन करता हूं कि 10 नवंबर को जब वो मतदान करने जाएं तो वो स्पष्ट मैंडेट दें ताकि सभी पार्टियां उसे स्वीकार कर सकें। पेड्रो सांचेज के शब्द। हेटी की राजधानी पोर्टो प्रिंस और देश के कई हिस्सों में आज लगातार दूसरे दिन लोग तेल की भारी कमी के कारण प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां एक तरफ कई सड़कें खाली रहीं, प्रदर्शनकारियों ने कई सड़कों को आज ब्लॉक किया। बीबीसी समाचार।
ये बी बी सी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी इस समय लाइव। मेरा नाम है संदीप सोनी। अफगान तालिबान के मुख्य वार्ताकार ने अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की टेबल पर लौटने का आह्वान करते हुए कहा है कि अफगानिस्तान में जंग का खात्मा अमरीका और तालिबान दोनों के हित में है। दोनों पक्षों के बीच कई दौर की बातचीत के बाद इस महीने के शुरुआती दिनों में ऐसा लग रहा था कि तालिबान और अमरीका में समझौता हो जाएगा जिससे अफगानिस्तान में 18 साल से जारी संघर्ष खत्म हो जाएगा। अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तालिबान नेताओं और अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी को मिलने के लिए 8 सितंबर को कैंप डेविड आने का न्योता भी दिया था, लेकिन अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में 6 सितंबर को तालिबान के हमले में एक अमरीकी सैनिक और 11 अन्य लोगों की मौत के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने शांति वार्ता रद्द कर दी थी। इस घटनाक्रम का जिक्र करते हुए तालिबान के मुख्य वार्ताकार शेर मोहम्मद अब्बास ने बीबीसी को दिए साक्षात्कार में कहा,
The negotiation is the only way for peace in Afghanistan. So that's why we have started negotiation with the American side.
अफगानिस्तान में शांति का एकमात्र रास्ता है बातचीत। यही वजह है कि हमने अमरीका के साथ बातचीत शुरू की थी। हम आशा करते हैं कि अमरीका में राष्ट्रपति ट्रंप अपने वार्ताकार जलमे खलीलजाद की बात सुनेंगे। मैं जानता हूं कि अमरीका में कुछ लोग ऐसे हैं जो अफगानिस्तान में शांति वार्ता के विरोधी हैं। फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप उन लोगों की बात नहीं सुनेंगे क्योंकि अफगानिस्तान में जंग न हमारे हित में है न ही अमरीका के हित में। ये थे तालिबान के मुख्य वार्ताकार शेर मोहम्मद अब्बास के शब्द। तालिबान के मुख्य वार्ताकार ने जोर देकर कहा कि तमाम बातों के बावजूद उनकी ओर से समझौते के लिए दरवाजे खुले हुए हैं और अमरीका को भी इस बारे में दोबारा विचार करना चाहिए। अमरीका के साथ शांति वार्ता पर तालिबान का यह बयान ऐसे समय आया है जब बीबीसी की एक खास पड़ताल से पता चला है कि अफगानिस्तान में हिंसा चरम पर है, जहां अगस्त महीने में ही हिंसा की घटनाओं में हर दिन औसतन 74 लोग मारे गए हैं। बात इसराइल की। इसराइल में एग्जिट पोल्स के नतीजों के मुताबिक देश में इतिहास एक बार फिर खुद को दोहरा रहा है और बिन्यामिन नेतन्याहू अपने दम पर सरकार नहीं बना पाएंगे। सरकार तभी बनेगी जब कुछ दल मिलकर गठबंधन बनाएं। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए मानसी दास से।
इसराइल में बुधवार सवेरे तक शुरुआती रुझान आने शुरू हो जाएंगे और उम्मीद की जा रही है कि गठबंधन सरकार बनाने के लिए कवायद तेज हो जाएगी। बेन्यामिन नेतन्याहू इस बार रिकॉर्ड 5वीं बार प्रधानमंत्री बनने की कोशिश में है, लेकिन एग्जिट पोल्स के नतीजों की माने तो नेतन्याहू की लिक्विड पार्टी और पूर्व सेनाध्यक्ष बेनी गेंट्स की ब्लू एंड व्हाइट पार्टी को संसद में 31 से 34 सीटें मिल सकती हैं और सरकार बनाने के लिए दोनों ही पार्टियां बहुमत से दूर नजर आ रही हैं। लिक्विड पार्टी की नेता शेरन हेस्कल को उम्मीद है कि उनकी पार्टी एक बार फिर सरकार बनाएगी।
Obviously, we are quite worried, but we keep in mind, just a couple of months ago, we had.
निश्चित तौर पर हम काफी चिंतित हैं, लेकिन हम ये भी सोच रहे हैं कि कुछ महीने पहले जो चुनाव हुए थे, एग्जिट पोल्स में नतीजे लिक्विड पार्टी के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। जब असल नतीजे आए तो हमने देखा कि हमें लोगों का समर्थन हासिल था और हम गठबंधन सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकते थे। इसलिए हम उम्मीद नहीं हारना चाहते और हमें बस कुछ ही देर का इंतजार है जब हम नतीजे देखना शुरू करेंगे। ये थी लिक्विड पार्टी की शेरन हेस्कल के शब्द। लेकिन नेतन्याहू को चुनौती केवल बेनी गेंट्स से नहीं है, उन्हें एविगडोर लिबरमैन के नेतृत्व वाली दक्षिणपंथी इसराइल बेटिनू से भी कड़ी चुनौती मिल रही है। लिबरमैन नेतन्याहू के करीबी सलाहकार और देश के रक्षा मंत्री रह चुके हैं, लेकिन 31 साल साथ काम करने के बावजूद नेतन्याहू और लिबरमैन के बीच गहरे मतभेद हैं। माना जा रहा है कि लिबरमैन की पार्टी इन चुनावों में किंगमेकर की भूमिका निभा सकती है और ये तय कर सकती है कि सरकार कौन बनाएगा। एविगडोर लिबरमैन ने इस बात का इशारा भी दे दिया है कि गठबंधन सरकार बनने की संभावना है। मंगलवार को अपने समर्थकों से उन्होंने कहा, हमारे पास केवल एक ही विकल्प है, राष्ट्रहित में एक उदारवादी सरकार जिसमें इसराइल बेटिनू, लिक्विड और ब्लू एंड व्हाइट पार्टी मिलकर सरकार बनाएं। आर्थिक रूप से और सुरक्षा के लिहाज से हम इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और इस कारण हमारे देश को एक उदारवादी सरकार की जरूरत है। ये थे एविगडोर लिबरमैन के शब्द। इसराइल का इतिहास रहा है कि 120 सदस्यीय संसद में कभी किसी दल को बहुमत नहीं मिला। इसी साल अप्रैल में हुए आम चुनावों में नेतन्याहू की लिक्विड पार्टी ने 120 में से सिर्फ 35 सीटें जीती थी। इस बार नेतन्याहू के सामने खुद को एक बार फिर साबित करने की चुनौती है। चुनाव जीते तो वो लगातार चौथी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन ऐसा ना हुआ तो 2009 के बाद इसराइल एक नए नेता का स्वागत करेगा।
इसराइल में एग्जिट पोल्स के नतीजे, बिन्यामिन नेतन्याहू अपने दम पर नहीं बना पाएंगे सरकार, रिपोर्ट सुना रही थी मानसी दास। भारत सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि भारत प्रशासित कश्मीर में सब कुछ सामान्य है, लेकिन मंगलवार को जब भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने श्रीनगर जाकर कुछ लोगों से मिलना चाहा तो उन्हें श्रीनगर हवाई अड्डे से ही वापस दिल्ली भेज दिया गया। दिल्ली लौटने पर बीबीसी संवाददाता संदीप राय ने यशवंत सिन्हा से बात की, सुनिए उन्होंने क्या बताया।
2016 में यहाँ पर हम लोगों ने मिलकर, कुछ लोगों ने एक कंसर्न सिटीजन ग्रुप बनाया था जम्मू और कश्मीर में शांति बहाल करने के लिए, और हम लोग 5-6 बार जम्मू और कश्मीर इसी सिलसिले में गए हैं। कभी भी किसी ने हम लोगों को रोका नहीं। इस बार भी हम लोगों ने तय किया कि भारत सरकार ये दावा कर रही है कि सब कुछ वहाँ नॉर्मल हो गया है, तो 44 दिन बीत चुके हैं, तो अब हम लोग चले वहाँ पर कुछ मित्रों से मिलेंगे और बातचीत करेंगे। तो हम लोगों ने एक 36 घंटे का प्रोग्राम बनाया कि आज हम लोग वहाँ पर जाएंगे और कल शाम को वहाँ से लौट आए। तो उसके अंतर्गत हम लोग 4 लोग, एक सज्जन पहले जा चुके हैं वजाहत हबीबुल्ला, लेकिन 4 लोग जिसमें कि सुशोभा बारवे, भारत भूषण, वाइस मार्शल रिटायर्ड कपिल काक और मैं करीब 12:15 बजे एक फ्लाइट से श्रीनगर पहुंचे। एयरपोर्ट पर हमें वहाँ के डिप्टी कमिश्नर बडगाम मिले और उन्होंने ये कहा कि बाकी लोग तो फ्री हैं श्रीनगर जाने के लिए, लेकिन मुझे इजाजत नहीं है एयरपोर्ट से बाहर जाने की और मैं वापस दिल्ली लौट जाऊं। तो मैंने कहा कानून की किस धारा के तहत आप ये ऑर्डर हमको दे रहे हैं और हमें रिटन ऑर्डर चाहिए। तो वो 2 घंटे 2.5 घंटे फिर वहां से लापता हो गए। फिर उन्होंने आकर मुझे एक रिटन ऑर्डर दिया अंडर सेक्शन 144, जिसमें बेसिकली वो ये कह रहे थे कि हम थ्रेट टू पीस हैं उनके जिले में और इसलिए हमको वो इजाजत इस बात की नहीं देंगे कि मैं एयरपोर्ट से बाहर जाऊं और मुझे दिल्ली वापस लौटा देंगे। तो मैंने उनसे कहा कि आप कह रहे हैं कि इजाजत नहीं देंगे, दिल्ली वापस लौटने की बात आपने अपने रिटन ऑर्डर में नहीं करी है, तो मैं एयरपोर्ट पर रहूंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, एयरपोर्ट बंद हो जाता है ये वो। फिर उसके बाद हमने कहा कि मैं आपके आज्ञा का पालन नहीं कर सकता हूं क्योंकि आपने ये नहीं कहा कि मैं दिल्ली जाऊं अपने रिटन ऑर्डर में। तो उसके 2-3 घंटे के बाद फिर वहां के जो SP हैं वो एक ऑर्डर लेके आए लिखित में, जिसमें उन्होंने कहा कि आपको दिल्ली वापस जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि आपका ऑर्डर जो है वो संविधान के मुताबिक, कानून के मुताबिक और नैतिकता के दृष्टिकोण से बिल्कुल गलत है, तो इसलिए मैं इसका अनुपालन नहीं करूंगा, इसके आगे की जो कानूनी कार्रवाई आप मेरे खिलाफ करिए। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा चलिए आपको हम बाहर ले चलते हैं। तो अभी थोड़ी हमारी घुटने में चोट है तो मैं व्हीलचेयर में गया था, तो व्हीलचेयर में उन्होंने हमको बिठाया और उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आया जहां से एक तरफ एग्जिट था, दूसरी तरफ बोर्डिंग गेट। तो जब हम वहां उस पॉइंट पर पहुंचे तो उन्होंने अचानक व्हीलचेयर को मोड़ दिया बोर्डिंग गेट्स की तरफ। मैं खड़ा होने की कोशिश करने लगा व्हीलचेयर से, तो उन्होंने हमको जबरदस्ती 5-6 लोगों ने मिलकर वहां पर जबरदस्ती बिठा दिया व्हीलचेयर में और कहा कि नहीं, आपको हमारे आदेश का पालन करना पड़ेगा और एयरक्राफ्ट जो लगा है वहां पर तुरंत आपको लेके जाएंगे हम। तो जबरदस्ती हमको वहां से ये लोग दबा के व्हीलचेयर में और हमको ले गए, उन्होंने जबरदस्ती हमको हवाई जहाज में बिठा दिया और मैं यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट आ गया। यही आज की कहानी है। सब कुछ नॉर्मल है श्रीनगर में और वैली में, सब लोग वहाँ बहुत खुश हैं। इसलिए हमने उनसे कहा कि भाई सब लोग बहुत खुश हैं, हम उनकी खुशियों में शामिल होने आए हैं। आप लोगों ने कल सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सब कुछ वहाँ पर नॉर्मल है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फिर हमें क्यों रोक रहे हैं। लेकिन उन्होंने हमारी एक भी नहीं सुनी और बिल्कुल ही बेढंगे तौर से जबरदस्ती हमको फिजिकली फोर्स करते हुए प्लेन में बैठा के वापस भेजा है।
ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा। आमतौर पर जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिलने आता है, प्रधानमंत्री से मिलने दिल्ली आता है, तो ये बहुत सामान्य सी बात लगती है। इस पर आमतौर पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी से मिलने दिल्ली आती हैं तो बात थोड़ी अलग हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि राजनीति की ज़मीन पर दोनों नेताओं में 36 का आंकड़ा रहा है और बयानों के तीर एक दूसरे को लहूलुहान करते रहे हैं। बीबीसी संवाददाता संदीप राय ने कोलकाता में वरिष्ठ पत्रकार PM तिवारी से बात की और इस मुलाकात की वजहों को जानना चाहा।
एक तो ममता का ये जो आक्रामक रणनीति रही है, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ, उसे देखते हुए इसे काफी हैरत की निगाह से देखा जा रहा है। और हाल के महीनों में जो केंद्रीय एजेंसियां सक्रिय हुई है, चिट फंड घोटाले से लेकर नारदा स्टिंग ऑपरेशन के मुद्दे पे तृणमूल के नेताओं को बार बार बुलाया जा रहा है, अब तक 10 नेताओं को सम्मन भेजा गया। फिर पूर्व पुलिस आयुक्त हैं राजीव कुमार, उनके खिलाफ काफी गहमागहमी हो रही है। तो इन तमाम चीजों को जोड़कर ममता के इस दौरे से देखा जा रहा है कि शायद वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र के साथ अपने बिगड़े रिश्तों को सुधारने की कवायद के तहत दिल्ली जा रही है। ममता बनर्जी के पैरों तले की जमीन लगातार खिसक रही है लोकसभा चुनाव के बाद से ही, और बीजेपी कई जगह उन पर भारी पड़ रही है। तो अब 1.5 साल से भी कम समय बचा है बंगाल के विधानसभा चुनाव में, और ममता की निगाह और उनकी पार्टी की निगाह, उनका एक तरह से कहा जाए तो वजूद ही इन चुनाव पे टिका है। और जैसा कि विपक्षी सीपीएम और कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि ये मोदी बीबी भाई भाई हैं और दोनों के बीच गोपनीय तालमेल है, और इसी एजेंडे के तहत ममता दिल्ली जा रही है।
कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, क्या ये भी दोनों नेताओं की वार्ता का एक एजेंडा रहेगा?
हाँ, ये एजेंडा एक हो सकता है, क्योंकि इन्हीं राजीव कुमार के मुद्दे पे बीती फरवरी में ममता बनर्जी धरने पे बैठी थी, और इस तरह से केंद्र और राज्य सरकार में आमने सामने टकराव जैसे हालात पैदा हो गए थे। ये भी एक स्थिति है, जैसा यहाँ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ये एजेंडा हो सकता है, इसे ममता ने अपनी नाक का सवाल बनाया हुआ है। हालांकि अभी ताजा जो घटनाक्रम 3-4 दिनों में हुए हैं, उसमें ममता ने कोई टिप्पणी नहीं की है। एयरपोर्ट पर जाते हुए उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि वे तो दिल्ली कम जाती हैं और राज्य सरकार के कई कामकाज हैं, ये रूटीन दौरा है। और मोदी से मुलाकात का जिक्र होने पर उनका कहना था कि यह एक सद्भावना मुलाकात है और राज्य सरकार की कई मांगे हैं, आर्थिक मांगे हैं, जैसे केंद्रीय योजनाओं के मद में पैसे नहीं मिल रहे हैं, 100 दिनों का रोजगार हो या सड़क परियोजनाएं हो। इसके अलावा बंगाल का नाम बदलने का मुद्दा भी वर्षों से लंबित है, उस मुद्दे पर भी बात करेंगी। और इसके साथ ही उनका कहना था कि सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के विलय और BSNL और रेलवे की जो समस्याएं हैं, उन पर भी बातचीत करेंगी। ममता बनर्जी और मोदी की इस मुलाकात के बाद संभव है कि केंद्रीय एजेंसियों की सक्रियता कुछ कम हो जाए। अचानक 2 दिन पहले कल पता चला कि वो दिल्ली जाएंगी, इसके पहले तक कोई चर्चा नहीं थी। अभी बीते दिनों बैठक भी बुलाई थी जब मोदी ने, तो उसमें भी उन्होंने मना कर दिया था जाने से, और पहले से भी कहती रही है कि वो मोदी को प्रधानमंत्री नहीं मानती। तो अचानक उनका रवैया बदलना एक हैरत तो है ही।
ये थे कोलकाता से वरिष्ठ पत्रकार PM तिवारी।
नमस्कार भारत, शॉर्ट वेव 49, 41 और 25 मीटर बैंड यानी 6070, 7290 और 11995 किलोहर्ट्ज़, और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
और आइए अब एक नजर दिल्ली से छपने वाले आज के अखबारों की सुर्खियों पर। मानसी दास स्टूडियो में मेरे सामने वाली ठीक कुर्सी पर बैठी हैं और तमाम अखबार उनके हाथ में हैं।
जी संदीप जी, मैं ठीक और सही कुर्सी पर ही बैठी हूं, और दिल्ली से छपने वाले से जो अखबार हैं उनके पहले पन्ने पर आज भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान छाया हुआ है। बीते कल उन्होंने कहा था कि एक दिन POK पाक अधिकृत कश्मीर जो भारत का हिस्सा है, उम्मीद है वो एक दिन भारत का भौगोलिक हिस्सा होगा। इसी खबर को लगभग हर अखबार ने अपने पहले पन्ने पर दिया है। हिंदुस्तान टाइम्स ने इसी बयान को अपनी हेडलाइन बनाया है। इंडियन एक्सप्रेस ने हेडलाइन लगाई है POK पार्ट ऑफ इंडिया एक्सपेक्ट टू हैव फिजिकल ज्यूरिस्डिक्शन ओवर इट वन डे। कई दूसरों ने भी इस बयान को प्रमुखता से छापा है और उनकी तस्वीर भी छापी गई है। और साथ में अखबारों में एक और तस्वीर है आज पहले पन्ने पर। कल मोदी प्रधानमंत्री मोदी ने अपना जन्मदिन मनाया था, तो इस अवसर पर कुछ तितलियां उन्होंने छोड़ी थी, और ये तस्वीर जो है कई अखबारों में रंग बिरंगी ये तस्वीर अखबारों में आप देख सकते हैं।
और मानसी, सोशल मीडिया पर कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि इस तरह से तितलियां उड़ाकर कोई अपना जन्मदिन मनाता है क्या?
खैर एक यहाँ पर इरफान का जो कार्टून है जनसत्ता पर, जनसत्ता में छपा है, वो भी एक बार पढ़ लूँ। आपको याद होगा इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कई बार ये बोल चुके हैं कि अगर भारत पाक में युद्ध हुआ तो वो परमाणु युद्ध होगा। तो इसी पर ये कार्टून है जिसमें एक चेयर पे बैठे हुए हैं इमरान खान, सामने उनकी मेज़ पर एक तरफ पाकिस्तान का झंडा है तो एक तरफ एक परमाणु मिसाइल रखी हुई है और दरवाजे के बाहर से दो नेता झांक रहे हैं और बोल रहे हैं अब तो उनके पास जाने में भी डर लगता है, कहीं गुस्से से वो न्यूक्लियर बम ही ना फेंक कर मार दें। और टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर आपको बता दूं, भारतीय प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बैठक में कश्मीर एक बड़ा मुद्दा नहीं रहेगा, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। और इस खबर के अनुसार एक वरिष्ठ चीनी अधिकारी ने मंगलवार को ये बताया है कि दोनों नेताओं के बीच अक्टूबर में एक मुलाकात होनी है और इस मुलाकात में रणनीतिक तौर पर अहम कई मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन कश्मीर बड़ा मुद्दा हो सकता है ऐसा ना हो। हालांकि बैठक की तारीखों का अभी ऐलान नहीं किया गया है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर के अनुसार केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद से जिन नेताओं को हिरासत में लिया गया है उन्हें 18 महीने से पहले रिहा कर दिया जाएगा। अखबार लिखता है कि उन्होंने कहा है कि पत्रकार अक्सर कश्मीर में नेताओं के हिरासत में लिए जाने के बारे में सवाल करते हैं और उन्हें मैं यही कहता हूं कि 18 महीने से पहले सभी नेताओं को रिहा कर दिया जाएगा। और ये माना जा रहा है कि उनका जो इशारा है वो आपातकाल के दौर की तरफ था जब विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिया गया था और जेल में डाला गया था। जनसत्ता में एक खबर छपी है कि राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी के सभी 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। राजस्थान में नगर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव होने वाले हैं और इसी के मद्देनज़र ये जो है इसे अशोक गहलोत सरकार की एक बड़ी सफलता माना जा रहा है।
शुक्रिया मानसी। हिंदुओं की धार्मिक आस्था के केंद्र ओडिशा के पुरी शहर में जगन्नाथ मंदिर के 75 मीटर के दायरे में सभी मकानों, दुकानों और मठों के खिलाफ बीते एक महीने से अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। स्थानीय लोग इससे नाराज हैं जबकि प्रशासन का दावा है कि मंदिर और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए ऐसा किया जाना जरूरी था। हमारे सहयोगी संदीप साहू ने पुरी जाकर हालात का जायजा लेकर ये रिपोर्ट भेजी है।
पुरी के जगन्नाथ मंदिर के बाहर आजकल श्रद्धालुओं के शोर से ज्यादा बुलडोजरों के घरघराहट की आवाज सुनाई देती है। मंदिर के ऊंचे मेघनाद दीवार के चारों ओर सटे सभी सरकारी और गैर सरकारी मकान और ढांचे गिराए जा चुके हैं। मंदिर के ठीक सामने बने 900 साल पुराना एमआर मठ तथा बाईं तरफ बने सदियों पुराना लंगुड़ी और बड़ो आखड़ा मठ मिट्टी में मिल चुके हैं, जबकि छोटे बड़े 18 अन्य मठ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इन 18 मठों में मंगू मठ भी शामिल है जिसका सिख पंथ और गुरु नानक से गहरा संबंध रहा है। जिला प्रशासन का कहना है कि मंदिर और दर्शनार्थियों की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाना जरूरी था, लेकिन जो लोग विस्थापित होने जा रहे हैं या हो चुके हैं वे इस दलील से संतुष्ट नहीं हैं। कम से कम 200 साल पुराना सांचता मठ के महंत रामभूषण दास अपनी नाराजगी इन शब्दों में बयान करते हैं।
एक मंदिर है, जैसे मंदिर है, जैसे आप देखिए यहाँ पर देख लीजिए, मंदिर के अलावा लोग रहने के लिए एक जगह है या कोई दुकान नहीं है, बिजनेस नहीं है, कि कोई लाज नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। इसमें तो खाली जो अभ्यागत आया बैठा यहाँ खाया पिया उसके लिए व्यवस्था हुआ चला गया। जहाँ बिजनेस है, धर्मशाला है, लॉजिंग है, होटल है, अलग अनेक प्रकार का सुविधा लोग किया है, वहाँ बाधा मंदिर के लिए हो सकता है, पर यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
पुरी के गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती धार्मिक मामलों में सरकार की दखलंदाजी की आलोचना करते हुए कहते हैं,
सेकुलर संविधान या सेकुलर तंत्र का हस्तक्षेप ऐसे पवित्र संस्थान के लिए उचित नहीं है, बल्कि शासन तंत्र का भी दायित्व है कि धार्मिक आध्यात्मिक विधा के पोषक होकर वह एक सहभागी घटक के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करे।
मठों को तोड़े जाने का विरोध करते हुए पुरी के सामाजिक कार्यकर्ता देवाशीष मिश्र कहते हैं,
तो धाम को ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि टूरिस्ट प्लस पर्यटन शहर, धाम और पर्यटन में सरकार को अंतर दिखाई नहीं दे रहा।
लेकिन पुरी के कलेक्टर बलवंत सिंह इस आरोप से सहमत नहीं हैं कि मठों को तोड़ने से मंदिर की धार्मिक और आध्यात्मिक धरोहर से कोई खिलवाड़ हुआ है।
मठ लोग हैं, मठ लोगों के साथ हमारी बात हो रही है, उनका जो मेन मुख्य मंदिर है उसको हम बचा के रख रहे हैं, उसकी पूजा अर्चना के लिए जो भी हेल्प बनेगा तो तात्कालिक रूप से वो हम करेंगे। परमानेंट मंदिर में मठ महंत के रहने के लिए जो फैसिलिटी चाहिए, जो संतों के लिए फैसिलिटी चाहिए, वो जस्ट सिक्योरिटी जोन के बाहर इमीडिएटली जैसे देंगे, आके वो अपनी पूजा पाठ कर पाए मंदिर की, उसकी व्यवस्था करेंगे।
कलेक्टर श्री सिंह के इस दलील को नकारा नहीं जा सकता कि मंदिर के बाहर का इलाका काफी संकरा था, जिसके कारण रथ यात्रा, सुनावेश और नागार्जुन वेश जैसे विशेष अवसरों पर न केवल भीड़ पर नियंत्रण पाना मुश्किल होता था, बल्कि कई बार भगदड़ में लोगों की जानें भी जाती थीं। लेकिन जिनके घर और रोजी रोटी छिन रहे हैं, उन्हें ये बात कौन समझाए। मंदिर के पास प्रभु जगन्नाथ जी को सेनापटा यानी दर्जी सेवा प्रदान करने वाले बसंत महापात्र इस बात को लेकर नाराज हैं कि उन्हें खदेड़ने से पहले उनके पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की गई। वे कहते हैं,
नहीं, हम तो जो पूछेंगे हम बोलेंगे नहीं करना चाहिए आपको। हमें घर में 7 भाई रहते हैं, 40 जन मेंबर रहते हैं हम इस घर में, हम जगन्नाथ जी का सब इसको ध्वजा बिक्र हम पेट पूछते हैं, लेकिन ये जो है सबका लिए होता है, हमारा तो होगा ना जरूरी, लेकिन इसे पूरा थैथान करना चाहिए, पहले थैथान करना चाहिए और उसके बाद तोड़ना चाहिए।
कलेक्टर बलवंत सिंह भी मानते हैं कि पुरखों से मंदिर के इर्द गिर्द रहने या रोजी रोटी कमाने वालों के लिए मंदिर से दूर जाना आसान नहीं है।
मैं समझता हूँ जो लोग जनरेशन से यहाँ रहते आए हैं, जो जनरेशन से बिजनेस करते आए हैं, उनको सर्टेनली 1-2 साल के लिए थोड़ा सा पेन होगा, लेकिन ये जो पेन है, ये जो दर्द है, वो मेरे हिसाब से बड़े कॉज के लिए है। जो आस्था का केंद्र है, 4 धाम में से 1 धाम है हमारा, वो धाम को डेवलप करने में, उसकी सिक्योरिटी में और इस विशेषकर दर्शनार्थी का जो जो सुरक्षा है, जो किसी हमारा क्राउड मैनेजमेंट में जैसे हेल्प मिलेगा ये रास्ता निकालने से, उसके लिए इनका त्याग निश्चय पूरी जनरेशन से याद रखेगी, पूरा स्टेट याद रखेगा।
अब ये तो इतिहास ही बताएगा कि इन लोगों की कुर्बानी याद रखी जाएगी या नहीं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुरी और जगन्नाथ मंदिर अब वैसा कभी नहीं रहेगा जैसा हम हमेशा से जानते आए हैं। संदीप साहू, BBC पुरी।
और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं सूर्यांशी पांडे। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं क्रिकेट के मैदान पर, जहां पर दक्षिण अफ्रीका भारतीय दौरा कर रही है। आज भारत के साथ दक्षिण अफ्रीका का दूसरा T20 मुकाबला होना है। ये मुकाबला पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन IS बिंद्रा स्टेडियम मोहाली में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मुकाबला शाम को 7 बजे शुरू होगा। आपको बता दें, पहला T20 मुकाबला दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच बारिश होने के कारण नहीं खेला जा सका। ये मुकाबला धर्मशाला में होना था। दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच 3 T20 मुकाबले होंगे, जिसके बाद 3 टेस्ट मुकाबले होंगे। और पहली बार एक भारतीय महिला क्रिकेटर ने फिक्सिंग की शिकायत की है। BCCI की एंटी करप्शन यूनिट ने राकेश बाफना और जितेंद्र कोठारी के खिलाफ फिक्सिंग और धोखेबाजी को लेकर बेंगलुरु में FIR दर्ज कराई है। बाफना ने महिला टीम की एक इंटरनेशनल खिलाड़ी से इस साल फरवरी में इंग्लैंड सीरीज के बीच फिक्सिंग की बात कही थी। क्रिकेटर ने एक आरोप के साथ फोन पर हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग भी जमा की है। स्पोर्ट्स मैनेजर जितेंद्र कोठारी ने सोशल साइट के द्वारा भारतीय खिलाड़ी से संपर्क किया था। इसके बाद उसने बाफना को मैच फिक्स करने के लिए महिला क्रिकेटर को अप्रोच किया। इस मामले में ICC ने भी जांच शुरू कर दी है। इस बीच तमिलनाडु प्रीमियर लीग में भी फिक्सिंग की जांच चल रही है। और बैडमिंटन के कोर्ट पर आज चाइना ओपन में साइना नेहवाल का मुकाबला होगा थाईलैंड की खिलाड़ी बोसनन से, और PV सिंधु का मुकाबला होगा चीन की खिलाड़ी लीस वरयुई के साथ।
वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का। सुनते हैं मुख्य समाचार पुनः मानसी दास से।
बीबीसी समाचार। अफगान तालिबान शांति वार्ता के मुख्य वार्ताकार शेर मोहम्मद अब्बास ने कहा है कि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर शांति वार्ता शुरू करनी चाहिए। सऊदी अरब ने कहा है कि उसके दो तेल संयंत्रों पर हुए ड्रोन हमले के बाद तेल के निर्यात में हो रही कमी से जूझने के लिए वो अपने तेल भंडारों का इस्तेमाल कर रहा है। सऊदी ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल्लाजीज बिन सलमान ने कहा है कि इस महीने के आखिर तक हालात सामान्य हो जाएंगे। इसराइल आम चुनावों के एग्जिट पोल में बिन्यामिन नेतन्याहू और उनके मुख्य प्रतिद्वंदी बेनी गेंट्स के बीच कड़ा मुकाबला दिख रहा है। स्पेन के राजा फिलिपे ने कहा है कि देश में सरकार बनाने के लिए कोई भी राजनीतिक दल संसद में बहुमत हासिल करने में नाकाम रही है और इस कारण फिर से चुनाव कराए जाने चाहिए। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे अजीत सारथी। अगला प्रसारण दिन भर भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे। फिलहाल संदीप सोनी के साथ समस्त सहयोगियों को दीजिए इजाजत, लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए bbchindi.com हमेशा आपके साथ है। नमस्कार।